ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन को व्यवस्थित करने हेतु सुरक्षा मापदंड जारी। अत्यावश्यक काम के अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सर्वसाधारण के आवाजाही पर लगाई गई रोक। सरकार द्वारा आगामी आर्थिक वर्ष के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण। आज पुनः 426 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 8,274 पहुंची। और यूरोपियन देशों के अर्थतंत्र को संभालने हेतु निर्मित 7 खरब 50 अरब यूरो का कोष परिचालन के विषय में यूरोपियन नेताओं के बीच विचार विमर्श। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा मापदंड 2077 जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक आषाढ़ 1 गते से लॉकडाउन में कुछ ढील दिए जाने के बाद में सुरक्षा सतर्कता अपनाने के लिए इस तरह का मापदंड लाया गया है। जारी मापदंड के मुताबिक अत्यावश्यक कामों के अलावा रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। इसी तरह विवाह, अंतिम संस्कार, लगायत के कामों में 15 लोगों से अधिक आगंतुक के शामिल होने, उत्पादन मूलक क्रियाकलापों, उद्योग, कारखानों, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माण जैसे क्रियाकलापों के संचालन के दौरान एक ही समय में 10 से अधिक लोगों को जमा न होने देने का नियम लागू किया गया है। साथ ही सभी से इस मापदंड के जरिए उच्च सतर्कता अपनाने को कहा गया है। सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 के लिए चावल का न्यूनतम समर्थन कीमत तय किया है। मंत्रिपरिषद की इसी आषाढ़ 2 गते हुई बैठक के निर्णयों को साझा के लिए आज सिंहदरबार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता समेत रहे अर्थ एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ. युवराज खतिवड़ा ने मोटा चावल की कीमत प्रति क्विंटल 2,735 रुपये और मध्यम चावल की कीमत प्रति क्विंटल 2,885 रुपये तय की है। इसी तरह नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए विश्व बैंक अंतर्गत की अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था से 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकार करने का बैठक ने निर्णय लिया है। बैठक में प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए छापा के खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी का मनोनयन करने, बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति के अध्यक्ष पद के लिए तापलेजुंग के छिम्बे शेरपा और कार्यकारी निदेशक पद के लिए नुवाकोट के होम बहादुर दोंग को नियुक्त करने, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के कार्यकारी निदेशक में काभ्रे की डॉ. राजन खनाल को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसी तरह स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली 2077 स्वीकृत करने, नेपाल के भू उपग्रह नीति 2077 को स्वीकृत करने, विभूषण नियमावली 2077 पहला संशोधन को स्वीकृत करने का निर्णय बैठक ने लिया है। आज पुनः 426 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पुष्टि होने के बाद नेपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 8,274 हो गई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. जागेश्वर गौतम ने इस बात की जानकारी दी। इसी तरह आज अतिरिक्त 206 लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होकर घर भेजा गया है, जिसके बाद संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की कुल संख्या 1,402 पहुंची है। इसी बीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने निर्देशिका जारी करते हुए सिर्फ तय किए गए व्यक्तियों का ही कोरोना वायरस नमूना संकलन तथा परीक्षण करने का संबंधित निकायों से आग्रह किया है। इसी तरह मंत्रालय ने कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण के लिए मास्क का सही प्रयोग करने और नियमित हाथ धोने का आग्रह भी सभी से किया है। राष्ट्रसभा की आज की बैठक ने विभिन्न 4 विधेयकों को स्वीकृत किया है। बैठक में अर्थमंत्री डॉ. युवराज खतिवड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2077, राष्ट्र ऋण लेने का विधेयक 2077 और ऋण तथा जमानत 24वां संशोधन विधेयक 2077 के ऊपर विचार किए जाने के प्रस्ताव को बैठक ने स्वीकृत किया है। इसी तरह कानून, न्याय तथा संसदीय मामले मंत्री डॉ. शिवमाया तुम्हांफे द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त कुछ अध्यादेशों को खारिज कर नेपाल एन के सावी की व्यवस्था को बचाने के लिए बनी अध्यादेश को प्रतिस्थापन करने हेतु बना विधेयक 2077 के विषय में विचार विमर्श किए जाने के प्रस्ताव को बैठक ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। राष्ट्रसभा की अगली बैठक अब आषाढ़ 8 गते सोमवार दोपहर 1 बजे के लिए तय की गई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
14 15 14 14 15 14 15
बजारमा नयाँ के छैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14 15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिरख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14 15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ नि त।
14 15 14 15 14 15 14 15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपालका संविधान दूसरा संशोधन 2077 नेपाल राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। संघीय संसद के दोनों सदनों की सर्वसम्मति से संशोधन प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने इसे कल ही प्रमाणित किया था। नेपाल का संविधान दूसरा संशोधन की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि नेपाल का संविधान दूसरा संशोधन 2077 तुरंत लागू होगा। इसी के साथ अब लिम्पिया धुरा, लिपुलेख सहित का नेपाली भूभाग में समेट कर नेपाल का निशान छाप लागू किया गया है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने सीमा पुलिस चौकी टिमुरे रसुआ के इंस्पेक्टर खेम प्रसाद नेपाल सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ 26,52,000 से अधिक का भ्रष्टाचार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर नेपाल सहित पुलिस हवलदार रामशरण रिमाल, पुरुषोत्तम खत्री और रामकाजी लामा के ऊपर अवैध रूप से चीन से नेपाल लाए गए सोना बरामद कर एक आपस में बांटकर कसूरवार को छोड़ने का आरोप था और ये बात पुष्टि होने के बाद आयोग ने आज उनके खिलाफ विशेष अदालत काठमांडू में मुकदमा दर्ज किया है। इस बात की जानकारी आयोग ने दी है। इन तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार रकम से दुगुनी क्लेम्ड अमाउंट वसूलने और जब्त करने की मांग दावी सहित मुकदमा दर्ज किया गया है। धनुषाकी जानकी मंदिर के मूल द्वार को पुनः बंद किया गया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता न अपनाए जाने की बात बताते हुए स्थानीय प्रशासन ने पुनः मूल द्वार को बंद कर दिया है। इससे पूर्व मंदिर, मस्जिद, सैलून, सभा गोष्ठी सहित भीड़भाड़ होने वाले जगहों को न खोलने को कहा गया था, लेकिन मंदिर आसपास के लोगों के दबाव के कारण मंदिर को खोलना पड़ा था। कर्नाली प्रदेश के दैलेख में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद कोरोना परीक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए पीसीआर मशीन खरीदा गया है। परीक्षण में देरी होने के पश्चात दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 का निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष की रकम से पीसीआर मशीन को खरीदा गया है। इसकी जानकारी प्रतिनिधि सभा सदस्य रविन्द्र राज शर्मा ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ दिनों में मशीन को जोड़कर दैनिक 300 लोगों का परीक्षण किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। कोरोना वायरस की महामारी के कारण बुरी तरह से आर्थिक मंदी को झेल रहे यूरोपियन देशों का अर्थतंत्र को संभालने के लिए 7 खरब 50 अरब यूरो कोष परिचालन के विषय में यूरोपीय नेताओं के बीच विचार विमर्श किया गया है। यूरोपीय नेताओं के बीच यूरोपियन आयोग द्वारा तैयार किए गए आर्थिक राहत पैकेज के विषय में वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया था। यद्यपि इस राहत पैकेज का फ्रांस और जर्मनी ने समर्थन किया है, परन्तु उत्तरी यूरोपियन राष्ट्रों ने इस राहत पैकेज का विरोध किया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 85,77,000 से बढ़ गया है। अब तक 45,67,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अमेरिका में 22,75,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सिंगापुर में दुकान, होटल और कैफे को खोलने की मंजूरी मिल गई है। यहां 2 महीने से लॉकडाउन रहा था। शुक्रवार को मसाज पार्लर और स्पा भी खोल दिए गए हैं। हालांकि सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि लोग इस ढील पर जश्न न मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें। यहां अब तक संक्रमण के 41,615 मामले सामने आए हैं और 26 लोगों की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन को व्यवस्थित करने हेतु सुरक्षा मापदंड जारी। अत्यावश्यक काम के अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सर्वसाधारण की आवाजाही पर लगाई गई रोक। सरकार द्वारा आगामी आर्थिक वर्ष के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण। आज पुनः 426 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 8274 पहुंची और यूरोपियन देशों के अर्थतंत्र को संभालने हेतु निर्मित 7 खरब 50 अरब यूरो का कोष परिचालन के विषय में यूरोपीय नेताओं के बीच विचार विमर्श। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।